ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی، پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے دمشق میں دہشت گردی اور شام کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازش. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، یقیناً کل شام کے بعد سے آپ خبروں میں مسلسل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ گزشتہ روز دوپہر بعد شام کی دارالحکومت دمشق میں سیکورٹی ایجنسی کی عمارت میں ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا، جس میں شام کے وزیر دفاع داؤد راجہ، ڈپٹی وزیر دفاع آصف شوکت اور شام کے بحران کو کنٹرول کرنے والے ادارے کے سربراہ حسن ترکمانی اور اس کے علاوہ بھی متعدد دیگر اعلی حکام مارے گئے. دہشت گردی کے اس واقعے کے پیچھے کیا محرکات اور اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ سیاسی شعور رکھنے والے سبھی افراد جانتے ہیں. گزشتہ 1.5 سال سے شام میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شام میں جمہوریت اور اصلاحات کا بہانہ بنا کر شام کے عوام، شام کی حکومت اور شام کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شام میں اصلاحات اور جمہوریت کی باتیں ایسے ممالک، خاص طور پر علاقے کی ایسی حکومتیں کر رہی ہیں جن کے عوام نے آج تک خفقان گھٹن کی زندگی کے علاوہ جمہوریت کے جھونکے تک بھی محسوس نہیں کیے اپنے اپنے ملکوں میں، سعودی عرب ہو یا قطر یا اردن ہو یا اس جیسی دیگر حکومتیں. لیکن شام میں جہاں پر ریفرنڈم بھی ہوا، جہاں پر پارلیمانی انتخابات بھی کرائے گئے، جہاں پر اصلاحات کا اعلان بھی کیا گیا، وہاں یہی حکومتیں امریکہ اور اسرائیل کی ایما پر جمہوریت، اصلاحات اور اس طرح کے دیگر نعروں کی باتیں کر رہی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ نعروں کی باتیں کر رہی ہیں، بلکہ اس کے بہانے وہ شام کے عوام، شام کی فوج، شام کے سیکورٹی اداروں، ان کے افسران، ان کے اہلکاروں کا بے گناہ خون بہا رہے ہیں اور پوری طرح سے اس ملک کو عدم استحکام اور بحران سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس کی تازہ ترین مثال گزشتہ روز آپ لوگوں نے دیکھی کہ شام کے وزیر دفاع، نائب وزیر دفاع اور دیگر اہم اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو قتل کیا گیا دہشت گردی کے واقعے میں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ممالک جو عراق اور افغانستان اور دیگر ملکوں میں دہشت گردی کا صفایا اور خاتمہ کرنے کے بہانے افغان اور عراقی شہریوں کا خون بہا رہے ہیں، انہوں نے دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعے پر نہ صرف یہ کہ کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، بلکہ الٹا دہشت گردوں کی حمایت میں ہی بیان دیا ہے. مگر کیا اس طرح سے شام کے عوام کے ارادوں اور ان کے عزم و حوصلوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے؟ کیا بشار اسد کی حکومت کو گرایا جا سکتا ہے؟ کیا بشار اسد کا صرف یہی جرم اور ان کی یہی خطا، ان کا یہی گناہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں، وہ صہیونی حکومت کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے قومی سیکرٹری جناب شمیم فیضی، اور اسی طرح ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر جناب اشتیاق احمد صاحب. مگر آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود، تہران اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفر عزیز خان صاحب، سب سے پہلے تو میں مختصراً کل کے واقعے پر آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا.
جی دیکھیے، یہ جو ہے واقعہ جو ہوا ہے، یہ جس نے جو ہے سیرین سیکیورٹی کے ہارٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اس میں جو انٹرنیشنل مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ واقعہ جو ہے کوئی عام ملیٹنٹ گروپ جو ہے وہ اس کو جو ہے کیری آؤٹ نہیں کر سکتا یا آرکیسٹریٹ یا انجینئر نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے. اس قسم کے واقعات جو کہ اتنے ہائی لیول پہ جا کے جو ہے وہ हुकूमत जो कि एंटाई इसराइल हुकूमत है बशार असद की, एक जहरी सी बात है कि उसका एक एंटाई इसराइल स्टांस है, और वो जो है जैसे कि आपने कहा कि इस मिडल ईस्ट रीजन में जो है वो इसराइल के खिलाफ एक फ्रंट स्टेट है। तो इस जो पेचीदा किस्म की जो बमिंग थी कल की, और जिसने जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि CIA, मूसाद, MI6, ब्रिटेन की जो वो है एजेंसीज, प्लस फ्रेंच जो स्पाई एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व थी, कि जिन्होंने बाकायदा जो है वो एक लीजिटिमेट और एक कानूनी हुकूमत की जो है उसकी जो सिक्योरिटी के अहम अफराद थे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर आपने बताया, डिप्टी डिफेंस जो कि खुद बशार असद के बरादर इन लॉ भी है, तो इस किस्म के अफराद को इसलिए आपने देखा कि खुद दमास्कस के अंदर जो है वो बहुत ही मामूली से जो नेबरहुड्स हैं उसमें जो है फायरिंग 2-3 दिन से ये पहले शो किया गया कि जो है वो दमास्कस जो है वो स्टेबल नहीं रहा। हालांकि आपने देखा कि ये जो सीरियन टेररिस्ट आर्मी है, ये जो एक जो है वो मिलिटेंट ग्रुप है जो कि एक टेरर गैंग्स हैं, उनको जो है अवाम में कोई उनकी रूट्स नहीं है, अवाम में उनकी कोई जड़ें नहीं है। ऑलरेडी इस पे तकरीबन 10 से 15 साल पहले, 10 साल पहले जो है प्रोग्रामिंग हो रही थी कि सीरिया को जो है वो, और ये प्लानिंग भी जो है वो CIA, मूसाद और इजरायली जो स्पाई एजेंसी है मूसाद, और ब्रिटेन MI6, फ्रेंच स्पाई एजेंसी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, वो ये कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी कि कैसे जो है वो सीरिया को जो है वो अनस्टेबल किया जा सकता है, कैसे सीरिया के अंदर जो है वो एक इंतशार की हालत जो है वो ईजाद की जा सकती है। जबकि आपने देखा कि ये जो टेरर गैंग्स हैं ये सिविलियंस को भी जो है वो पिछले 16 मंथ से जो है वो निशाना बना रही हैं, खुद सिक्योरिटी के जो है बहुत सारे अफराद मारे गए हैं, अब खुद जो है गवर्नमेंट के सेटअप में जो हाई रैंकिंग ऑफिशल्स हैं उनको जो है उनका खून जो है वो बहाया जा रहा है। और जैसा कि आपने खुद इशारा किया कि किसी भी US या किसी भी US लेड कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, कि उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो इसकी कंडमनेशन में जो है वो इशू नहीं हुई। अलबत्त कुछ ममालिक है जैसे रशिया ने जो है वो सख्त एतराज़ किया है, चाइना ने किया है, रीजनल कंट्रीज हैं, खुद ईरान ने जो है वो सख्त मजम्मत की है इस टेरर वाकये की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बशार असद के खिलाफ जो है एक US लेड वेस्टर्न कंट्रीज, एक चंद ममालिक हैं, और उनके जो रीजनल पपेट हैं जिनमें सऊदी अरेबिया शामिल है, जिनमें कतर शामिल है, जिनमें जो है वो सऊदी अरेबिया और स्पेशली कतर जो है, ये जो है टेरर गैंग्स को पनाह दे रहे हैं, उनको बाकायदा फंडिंग कर रहे हैं, उनको बाकायदा जो है वेपन्स, हैवी वेपन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सीरियन सिटीज को जो है वो अनस्टेबल बनाया जा रहा है। तो ये एक ऑल आउट वॉर है जो सीरिया की अवाम के खिलाफ जो है एक इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसी और इंटरनेशनल प्लाट का हिस्सा है।
जी बहुत शुक्रिया आपके, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां पर मौजूद है हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के कौमी सिक्योरिटी जनाब शमीम फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी शमीम फैजी साहब, कल के वाकये से एक बार फिर ये बात वाजे हो गई कि मगरिब और अमेरिका की नजर में दहशतगर्दी की कई अकसाम है, एक अच्छी भी हो सकती है उनकी नजर में और एक बुरी भी हो सकती है। चुनांचे उनकी नजर में कल वाली दहशतगर्दी अच्छी थी और इसीलिए उन्होंने उसकी मजम्मत ना की, न सिर्फ मजम्मत नहीं की बल्कि उसकी हिमायत की और तारीफ भी की। क्या कहेंगे आप उनके इस दौरे में यार पर?
देखिए, सिर्फ सवाल दोहरे मेयार का नहीं है बल्कि दहशतगर्दी का हवा उन्होंने जानबूझकर खड़ा किया है, और दहशतगर्दी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं उन मुल्कों को निशाना बनाने के लिए जो उनकी खारजा पॉलिसी को की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आज से 10 साल पहले सबसे पहले दहशतगर्दी शुरू की उस वाक़े के साथ जिसमें अमेरिका की माशी और फौजी कुव्वत की अलामतों को निशाना बनाया गया था।
जी
आज तक ये साबित नहीं किया जा सका कि उस हमले के असल जिम्मेदार कौन थे। लेकिन उसके नाम पर उन्होंने दुनिया भर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करके बिलखुसूस उन मुल्कों को निशाना बनाया जहां कुदरती वसाइल हैं जिन पर वो कब्ज़ा करना चाहते थे, या फिर जो उनकी खारजा पॉलिसी के मकासद में रोड़े अटकाने की हैसियत रखते थे। उन्होंने 10 साल तक अफ़गानिस्तान को तबाह किया, इराक़ में वो मोहलिक हथियार ढूंढने के लिए गए जो आज तक नहीं मिले, लेकिन इराक़ को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसके बाद लीबिया को किया, और ये सब वो दोहरे मकसद से करते हैं। एक तो इन मुल्कों के पास जो कुदरती वसाइल हैं जिनसे वो मालामाल हैं उन पर कब्ज़ा किया जाए, ऐसी कठपुतली हुकूमतें वहाँ बनाई जाएं जो उन्हें इस लूट की खुली छूट दे दें। और दूसरा मकसद ये है कि मगरबी एशिया में इस खित्ते में उनका जो सबसे मजबूत हलीफ इज़राइल है उसकी कुव्वत को चैलेंज करने वाली कोई ताकत बाकी ना रहे, और इसी मकसद से उन्होंने लीबिया के बाद अब सबसे पहले सीरिया को निशाना बनाया है, और वहाँ पिछले 16 महीने से लगातार उनकी अपनी एजेंसियों की खबर जो वैसे मस्तशुदा होती हैं उनके मुताबिक भी दहशतगर्दों के हाथों मरने वाले बेगुनाह शहरियों की तादाद उनसे कहीं ज़्यादा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारे गए। लेकिन अमेरिका सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को तो दहशतगर्दी कहता है, और जो दहशतगर्द बैरूनी माली मादी और अखलाकी सियासी इमदाद की बुनियाद पर सीरिया के अंदर बदमनी फैलाना चाहते हैं उन्हें वो दहशतगर्दी नहीं कहते। इसी पस मंज़र में हमें देखना चाहिए कल के वाक़े को। वो सीरिया को दहशतज़दा करना चाहते हैं, वहाँ के अवाम को दहशतज़दा करना चाहते हैं जो बाकियों के हमनवा नहीं हैं। इतना बड़ा हमला करके उन्होंने साबित कर दिया है कि ये हमला दहशतगर्दों का अपना नहीं था, बल्कि जैसे जाफर साहब कह रहे थे कि इसके पीछे CIA मोसाद और इस किस्म की तजुर्बाकार एजेंसियाँ हैं। वो ना सिर्फ दूसरे मुल्कों में ऐसी कार्रवाई करती हैं बल्कि ये किसी न किसी मुल्क को निशाना बनाने के नुक्ते नज़र से जगह जगह इस किस्म की कार्रवाई करती हैं।
जी,
भारत के अंदर इसराइल के एक मामूली कारिंदे पर हमले को उन्होंने दहशतगर्दी का वाक़या बना दिया, और उसको जोड़ दिया थाईलैंड और ना जाने दुनिया के किस किस हिस्सों में जहाँ मोसाद ने यह कार्रवाई की। लेकिन इल्ज़ाम किसी और पर लगाना है, ईरान पर लगाना है, इसलिए उसे एक नया रंग रूप देने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि कल जो वाक़या हुआ उसे इस पस मंज़र में भी देखना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले पर बहस होने वाली है, और सिक्योरिटी काउंसिल में चीन और रूस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, या हम कह सकते हैं ब्रिक्स ममालिक जो मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, उसके पेश नज़र ऐसा लगता है कि इस बार अमेरिका को वो हिमायत नहीं मिल सकेगी जो उसे इराक़ वगैरह के सिलसिले में हासिल हुई थी। इसलिए वो अब ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं, ऐसी जंगी कार्रवाइयाँ और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करके, जिससे सीरिया एक मरतबा पूरी तरह से इनस्टेबिलिटी का शिकार हो जाए।
जी,
तो मैं इसे इस पस मंज़र में देखता हूँ।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर जनाब इश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम इश्ताक साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
इश्ताक साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं?
मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज रिजवी साहब।
जी इश्ताक साहब, कल के वाक़े पर आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही जो मगरबी मुल्कों और इलाके के बाद अरब हुकूमतों का रद्द अमल रहा है बजाय ये कि इसकी मजम्मत कहते हैं दहशतगर्दों की उन्होंने हिमायत की, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक़े और रवैये पर?
एक तो सबसे पहले तो जाफर साहब का जो पॉइंट था कि अभी तक ये तो
हाँ बजाय ऐसा लगता है कि आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है इश्ताक साहब से, हमारे साथी कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे रब्ता हो। बहरहाल मैं जाफर अजी खान साहब की खिदमत में, जाफर अजी खान साहब आप देखें कि जिस तरह से कल का दहशतगर्दी का वाक़ हुआ, जाहिर है कि एक बहुत बड़ा वाक़ था, वजीर दफा, डिप्टी वजीर दफा और जो कंट्रोल बहरान कंट्रोल करने का जो इदारा है उसके जो सरबराह थे हसन तुर्कमानी, इसके अलावा भी बहुत से अहम लोग उसमें मारे गए। लेकिन आप देखें कि बशार असद साहब ने वजीर दफा के कत्ल के फौरन ही बाद फहद जासिम को मुल्क का वजीर दफा बना दिया और पूरे इख्तदार के साथ उन्होंने कहा कि हम इस सूरत हाल का जो है वो डट कर मुकाबला करेंगे। तो क्या ये साबित नहीं करता ये ऐलान कि सीरिया के सियासी निज़ाम में, शाम के सियासी निज़ाम में, जैसा कि मगरिब और अमेरिका और उसके बाद इत्तेहादी हुकूमतें इलाके की समझ रही हैं कि शायद कमज़ोर हो चुकी हैं, किसी तरह के कोई तजल्जुल या कमज़ोरी नज़र नहीं आती?
सबसे पहली बात तो जैसे शमीम फैजी साहब ने ये इशारा किया कि अमेरिका जो है मिडल ईस्ट रीजन में जो है कोई ऐसी हुकूमत नहीं चाहता, कोई इतनी स्ट्रांग हुकूमत नहीं चाहता जो इसराइल की सिक्योरिटी को जो है वो चैलेंज कर सके। ये उनकी प्लानिंग जो है पिछले कई दहों से, कई अशरों से जो है ये वो इसी प्लानिंग पे जो है वो अमल करते रहे हैं। अब इस रीजन में जो फ्रंट स्टेट है इसराइल के खिलाफ, जिसने इसराइल की ऑक्यूपेशन को चैलेंज किया है, जिसने फलस्तीन की हिमायत की है, जिसने जो है लुबनान में जो है पीपल रेजिस्टेंस और आवाम की जो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्ला की हिमायत की है, वो जहरी सी बात है कि सीरियन हुकूमत थी। और जो है और उस सीरियन हुकूमत में जो है एक ये है कि जिस जो भी इस रीजन के अरब स्टेट्स हैं, ख़ा वो आप देख लें कि कतर हो या सऊदी अरेबिया हो, सीरिया जो है वो रिलेटिवली निस्बतन जो है उसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स पाए जाते थे। उसमें एक सिस्टम है, एक पार्लियामेंट है, एक रेफरेंडम हुए हैं, फिर यह है कि प्रेसिडेंट जो है वो भी इलेक्ट होता है। तो अंदरूनी हवाले से जो है जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक अवामी हिमायत हासिल है। तो ये जो कल आप ये इकदाम देख रहे हैं कि इतने बड़े वाक़े के बाद जिसमें जो है सिक्योरिटी के हाई रैंकिंग ऑफिशल्स मारे गए और डिफेंस मिनिस्ट्री के जो है वो बड़े लोग, तो उसके बाद जो है बेसिकली जो वेस्ट और उसके जो अलाइज है वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जो बशार असद की हुकूमत जो है वो जा चुकी है या वो अपना कंट्रोल लूज कर चुके हैं। तो उसमें जो फौरन जो है नए डिफेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट इशू करती है कि नहीं ऐसा नहीं है, चूँकि जो हुकूमती सिस्टम है उसमें जो है एक खुद जो है वो एक स्टेबल सिस्टम है, एक डिफेंस सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको पब्लिक की हिमायत हासिल है। यही जो है खुद रशिया और चाइना का भी पॉइंट है कि जो शाम में मौजूदा हुकूमत सरबर इकतदार है उसको अवामी हिमायत हासिल है। अब ये जो गैंग्स जो तकरीबन 16 महीने से काम कर रही थी और जिसकी प्लानिंग जो है वो पिछले 10 सालों से हो रही थी और जिसमें अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ सऊदी और कतर के अलावा टर्की भी शामिल है, और टर्की ने इस क्राइसिस में जो है वो एक नेगेटिव स्टांस लिया है और एक नेटो का जो है वो आलातकार बन के रह गया है। तो ये आप समझ लें कि ये एक कॉन्स्पिरेसी और ये एक बहुत बड़ा प्लाट है जिसके अंदर जो है वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है वो जो कठपुतली हुकूमतें हैं, अरब हुकूमतें हैं सऊदी प्लस वो, तो उनके जो है फंडिंग भी यूज कर रही हैं, उनके जो वेपन्स हैं उनको भी यूज कर रहे हैं, उन्हीं पैसों से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको भी जो है वो खरीदा जा रहा है। तो अब इस सिचुएशन में आप जो सीरिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि एक पीसफुल लोग हैं, जो कि अपने मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो अपने मुल्क में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और जो अपने मुल्क में सीरिया इस रीजन का यानी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है जहां पे जो है आवाम खुशहाली की ज़िंदगी रह रहे थे। तो एक जहरी सी बात है कि आप एक 1000 जो है इस किस्म की गैंग्स वो गैंग्स जो है अगर 1000 अफराद पे भी मुश्तमिल हो तो आप एक कंट्री को जो है वो अनस्टेबल कर सकते हैं, जब आपके पीछे जो है वो इंटरनेशनल जो है यूएस जैसे जो है वो इंटेलिजेंस सर्विसेज की, CIA की, मोसाद की, MI6 की, फ्रेंच इंटेलिजेंस सर्विस, तो ये प्लानिंग की जा रही है कि इन चंद मुट्ठी भरे अफराद के जरिए जो है मिलियंस की नेशन को जो है उसको प्रॉस्पेरिटी में आरूम कर दिया जाए, उनकी जो अमनियत है उनसे छीन ली जाए, एक ऐसा शो किया जाए कि सीरिया में जो है वो इंस्टेबिलिटी है। आप देखिए अदरवाइज चूंकि सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इन गैंग्स को इजली जो है वो कर सकते हैं, इनको क्रश कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये गैंग्स जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन में जो है स्मॉल सिटीज में और दमास्कस के बाज नेबरहुड्स में जो है जब सिविलियन पॉपुलेशन में छुप के कार्रवाइयाँ करती है और उनको टारगेट बनाती हैं और सिविलियन शील्ड यूज करती हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेज के अफराद भी इसलिए मारे गए कि चूंकि उनको ये हिदायत थी कि आपने हद मकदूर की कोशिश करनी है कि सिविलियन पॉपुलेशन की जान जो है वो खतरे में ना पड़े, तो ये इसका फायदा जो है वो उठाने में कामयाब हो चुके हैं, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज है। अब ये एक इंटरनेशनल क्राइम है, ये एक जो है दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं जिनके पीछे ये सारी कार्रवाइयाँ जो यूएस ने प्लॉट बनाया है, ये जो इसराइल और यूएस प्लस रीजनल कठपुतलियों ने प्लॉट बनाया है, ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ जाता है,
ये
ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि इनके एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो आप खुद ही जज कर सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया, चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, हमारे साथियों ने इत्तला दी है कि अब वो फनी खराबी दूर और मुर्तफा हो चुकी है। इश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज सुने आप?
वालेकुम अस्सलाम जी, सुन रहा हूँ बिल्कुल।
आप क्या कहना चाहेंगे कल के वाकये के तनाजुर में? आप देखें कि जब से ये वहां पर अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश शुरू हुई है गुज़िश्ता 1.5 से 16 महीने से, इस अरसे में आपने इसराइली हुकाम के उन बयानात को यकीनन पढ़ा और सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बशार असद की हुकूमत रह जाती है तो इसराइल नाबूद हो जाएगा। जाहिर है कि मिस्र में हुस्नी मुबारक को खो चुके, ट्यूनिस में ज़ैनुल आबदीन बिन अली को खो चुके और इलाके में इसराइल मुखालिफ जज्बात अपने उरूज पर हैं, तो अब ऐसे में एक सहारा इसराइल के लिए ही था कि सीरिया जो फ्रंट लाइन स्टेट है इसराइल के खिलाफ उसकी हुकूमत का खात्मा किया जाए, और इसी तनाजुर में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल की मर्जी के मुताबिक बशार असद की हुकूमत का खात्मा ना हुआ तो इसराइल नाबूद हो जाएगा। तो आप नहीं समझते कि सब कुछ जो खून बहाया जा रहा है शाम के अंदर शामी अवाम का, शामी शहरियों का, यह इसराइल को दवाम, उसको तहफ़ और उसको बका देने के लिए नहीं हो रहा?
इसमें रिजवी साहब देखें कि पिछले 1.5 साल में एक तब्दीली की फ़जा है इस खत्ते के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट जहाँ पे ट्यूनिस, फिर लीबिया, इजिप्ट, अब सीरिया, तो एक तो मेरे ख्याल में बात वाजे है कि यहाँ पे एक जो लोगों में एक था कि जी ज़्यादा राइट्स हों, ज़्यादा हकूक हों, सियासी तौर पे इकोनॉमिकली मुआशी तरक्की हो, तो जो बुनियादी इंसानी वजूहत की बुनियाद पर इन चंद ममालिक के अंदर वो एक अरब स्प्रिंग की एक फ़ा क्रिएट हुई और जिसका रिस्पॉन्स आपने देखा कि शुरू के अरसे के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों ने एक बड़ा पॉजिटिव उस पर रिस्पॉन्स दिया, चाहे मोरक्को ले लें, अल्जीरिया ले लें, शाम का भी आप जिक्र कर लें, और एक मरहला चला, लेकिन आपने फिर पिछले साल देखा कि लीबिया में इंटरवेंशन हुई, उसके बाद एक बिल्कुल एक अनसर्टन अनस्टेबल एनवायरनमेंट लीबिया में इस वक्त है, और इवेंचुअली कहा यह जाता है कि वहाँ पे खाना जंगी के लिए तमाम वजूहात मौजूद हैं, ज़मीनी हकायक वो रिफ्लेक्ट करते हैं। मिस्र के अंदर जहाँ पे हुस्नी मुबारक का कोई 20-30 साल से इकतदार था, उनका एक इसराइल से ख़ास किस्म की रिलेशनशिप है। लाइकवाइज आप नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ट्यूनिस का भी यही सिलसिला था, तो इसराइल और अमरीका या इनके जो इत्तेहादी हैं मगरबी कुव्वतें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था इस खित्ते में जो सियासी तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हुई पिछले 1.5 साल के अंदर। अब जिस तरह 9/11 को इस्तेमाल किया गया नई जंगें शुरू करने में, सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो एक पुराना एक स्कोर था अमरीके या उसके मगरबी इत्तेहादियों का वो सेटल करने में, तो जब भी कोई मौका आता है इस खित्ते के अंदर, अब सियासी तब्दीली के जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसको अब शाम के सिलसिले के अंदर, हालांकि असद रजीम ने मुतवातर पिछले 1.5 साल के अरसे में मुख्तलिफ पैकेजेस, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बतदरीज उन्होंने वो पैकेजेस जो नए हालात पैदा हुए उसके मुताबिक वो लेके आए हैं। लेकिन आपने भी अपने इंट्रोडक्टरी जो रिमार्क थे उसमें एक दोगलापन का जिक्र किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें एक दोगलापन है कि एक तरफ को अच्छे दहशतगर्द हैं, दूसरी तरफ बुरे दहशतगर्द हैं, और डिपेंड करता है कि अमेरिका के लिए कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। एक दोहरा मेयार दूसरी चीज़ में भी आपको नज़र आएगा कि बहरीन में भी इसी तरह का एक अपसर्ज हुई थी, लोगों की डिससेटिस्फेक्शन हुई थी, लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं जिसका कोई मजहबी इंतहा पसंदी से या कोई सेक्टेरियन डायमेंशन उसमें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक बुनियादी लोगों के मसाइल थे और एक डिक्टेटोरियल सेटअप जो कि चलता आ रहा है 12 सालों से। और यही आप अगर देख लें कि सीरिया के अंदर, शाम के अंदर भी आप अगर देख लें कि लोगों की सियासी मुआशी मुआशरती जो हकूक है, अगर उनके लिए ज़रा लोगों की ख्वाहिशात और डिमांड ज़्यादा हुई हैं किसी वजह से, तो उसको आप देखें कि एकदम से मगरबी दुनिया और ज़ाहिर है कि इज़राइल जो कि बुनियादी फैक्टर है सामने आ गए हैं और उसको भरपूर तरीके से उसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि शाम के जो नेबरहुड में कुछ कुवतें हैं जिसमें ख़ास तौर पे मैं नाम भी ले लेता हूँ, कतर, सऊदी अरेबिया और इवन यूएई, टू सम एक्सटेंट तुर्की, लेकिन तुर्की ज़रा चूँकि नेटो का मेंबर भी है तो हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि जी उनका जो रवैया होगा वो ज़ाहिर है कि अपने जो नेटो इत्तेहादी ममालिक हैं उनके भी इंटरेस्ट को सामने करेगा। लेकिन आप देखें कि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये तीन ममालिक हैं, अगर सिस्टम का आप मुवाजना करना चाहेंगे, चलो शाम में भी अपना वो सूरत हाल नहीं है जो कि ईरान में है या पाकिस्तान में या और मुस्लिम दुनिया में है, लेकिन जो अकवाम सीरिया में तब्दीली का ठेका उठाया हुआ है, आप उनकी अपनी हालत देखें, वहाँ पे आप देखें कि लोग कितने अपना किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पे किस तरह के सियासी मुआशी और मुआशरती हकूक अवाम को वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये भी डुअलिटी को मद्देनज़र रखें, वेस्टर्न डुअलिटी को भी मद्देनज़र रखें। आप दहशतगर्दी की जंग में जो डुअलिटी है, गुड टेररिस्ट वर्सेस बैड टेररिस्ट, उसको भी मद्देनज़र रखें तो आपको बिल्कुल सीरिया में जिस वक्त जो हो रहा है वो मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगा। मैं इंटरनेशनल कंस्पिरेसी जो थ्योरी होती है, जो फ्रेमवर्क हमारे दोनों दोस्तों ने इस्तेमाल किया, उसमें मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन आप देखें कि अगर कल का वाकया हुआ तो जो सो कॉल्ड फ्री सीरियन आर्मी है या एक आर्म्ड अपोजिशन है जिसमें अलकायदा भी शामिल है, तो मेरे ख्याल में वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो सकती कि वो इतनी सेंसिटिव और इतनी हाई लेवल अस्करी और सियासी क्यादत की जो मीटिंग को इस तरह वो एक अपना मिलिटेंट एक्टिविटी और उसमें कामयाब भी हो सकें। अब जाहिर है कि मोसैद या और जो अस्करी या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं मगरबी दुनिया की, खासतौर पे CIA, ये बिल्कुल चुप तो नहीं बैठे होते, ये भी प्लान करते हैं और ये भी अपना अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, जब वो अवेलेबल होती है तो फिर उसके ऊपर वो एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी तो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कल जो वाकया हुआ है जो कि बाकायदा दहशतगर्दी का वाकया है, बिकॉज असद रजीम उतनी ही लेजिटिमेट है बल्कि उससे भी ज़्यादा जितनी के सऊदी अरेबिया की बादशाहत या उर्दन के अंदर या कतर के अंदर या यूएई के अंदर जो मोनार्कीज हैं उनका सिलसिला है। तो मेरे ख्याल में असद रजीम और सीरिया जो है, हमें शाम को लीबिया के साथ भी नहीं कंपेयर करना चाहिए। सीरिया के अंदर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, एक पूरी तारीख है, एक अवाम है जो कि कंसोलिडेटेड है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये तमाम खित्ते से अकवाम शामिल हो गई हैं, मगरबी कुवतें इनको बैक कर रही हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जो पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है वो सीरिया के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल होगी
जी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा।
समझना चाहिए कि उसका जो इवेंचुअली जो उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, इफेक्ट्स होंगे, वो इन तमाम खित्ते के ऊपर होंगे और सीरिया तक महदूद नहीं रहेंगे
जी। बहुत शुक्रिया शमीम फैजी साहब। अभी आपने अपने गुफ्तगु में रूस और चाइना का जिक्र किया है कि ये लोग मुखालफत कर रहे हैं और आज भी वोटिंग होने वाली है शाम के खिलाफ एक करारदाद पर, और जाहिर है कि जो तेवर बताते हैं रूस और चीन की, वो ये कि अगर अक्वामे मुत्तहिदा के मंशूर की सातवीं शिक यानी फौजी कार्रवाई की बात उस मसौदे करारदाद में रखी गई तो जाहिर है कि रूस और चीन उसको वीटो करेंगे। लेकिन बाज़ इत्तला ये भी आ रही हैं कि अमरीका की कोशिश ये है कि रूस और चीन को बाईपास करके अक्वामे मुत्तहिदा से इजाजत ले ली जाए और फिर शाम के खिलाफ इकदाम किए जाएं, तो क्या ये सूरत हाल मुमकिन हो सकती है?
मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं हो सकेगी, इसलिए कि दुनिया अब ये समझने लगी है। शायद इश्तियाक साहब को जो वाहिमा है वो बहुत पहले कुछ और लोगों को भी था कि अमेरिका उस वक्त मुदाखलत करता है जब कुछ सूरत हाल पैदा हो जाती है। हम ये मानते हैं कि वो जानबूझकर ऐसी सूरत हाल पैदा करता है जिसमें वो अपने दुश्मनों को वहाँ से इकतदार से हटा सके, चाहे वो लीबिया का मामला हो या अब सीरिया का मामला हो। लीबिया में दुनिया भर से उन लीबियाइयों को जो बरसों से जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, पैसे देकर हथियार देकर बिनगाज़ी में जमा किया गया। यही कार्रवाई बिल्कुल सीरिया में भी की जा रही है। यहाँ मुकामी आवाम नहीं है बल्कि ये वो दहशतगर्द ग्रोह हैं जिनको सऊदी अरब में जमा करके तरबियत देकर बाकायदा सीरिया में भेजा जाता है। इसलिए मैं इसे ये कि अमेरिका अब मुदाखलत कर रहा है ये नहीं मानता हूँ, बल्कि सीरिया में जो कुछ भी हुआ है वो दरअसल अरब स्प्रिंग का हिस्सा नहीं बल्कि अरब स्प्रिंग का गला घोटने की अमरीकी साजिश का हिस्सा है। जहाँ तक अक्वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बरतानिया की जिस करारदाद पर जिसमें सीरिया में फौजी मुदाखलत और तहदीदात सेंक्शन लगाने की बात कही गई है उसे यकीनन रूस और चीन वीटो करेंगे, और अगर उसे जनरल असेंबली में ले जाने की कोशिश की गई तो ये एक अच्छा मौका है जब रूस और चीन ब्रिक्स का हिस्सा हैं और ब्रिक्स के पांचों मुल्क इस वक्त अक्वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, यानी भारत आर्दी मेंबर हैं, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका। मेरे ख्याल से इन मुल्कों की हुकूमतों को अब अपने आप को मनवाना होगा। मैं नहीं समझता कि भारत की हुकूमत इतना जुरतमंदाना कदम उठा सकेगी कि वो अमेरिका को ललकारे, लेकिन भारत के अवाम का अगर दबाव बढ़ा जो यकीनन सीरिया की मौजूदा हुकूमत के साथ हैं तो शायद अमेरिका को अपना वो खेल खेलने का मौका नहीं मिलेगा जो उसने इराक में खेला, जो उसने लीबिया में खेला। उसकी दो वजह है, एक तो दुनिया ज़्यादा बेदार हुई है, लोग ज़्यादा आसानी से समझने लगे हैं कि अमेरिका क्या चाहता है, इसराइल का तहफ़ कैसे करना चाहता है, और दूसरी बात यह है कि मैं खुद इससे पहले 3-4 साल पहले सीरिया गया था और मैं कह सकता हूँ कि पूरी अरब दुनिया में कई मुल्क में गया हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ ज़्यादा मुस्तहकम, ज़्यादा मुनज़्ज़म, उसे पूरी तरह से जमहूरी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा मुस्तहकम हुकूमत वहाँ है और उसे इतनी आसानी से उखाड़ नहीं फेंका जा सकेगा।
बहुत शुक्रिया जाफर अली खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि अब जबकि इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ और शाम के अवाम जो मुसलसल दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते रहे और कल के बाद उन्होंने एक बार फिर दमिश्क की सड़कों पर निकल कर बशार असद की हिमायत की, उनकी हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया, उनकी असलाहत की हिमायत का ऐलान किया और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हम इस तरह की जो साजिशें हो रही हैं आलमी साजिशें, आलमी मतलब अमेरिका के मद्देनजर जो अमेरिका की सरपरस्ती में जो साजिशें हो रही हैं हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। अब ऐसे में अगर अक़्वामे मुत्तहिदा को भी अमेरिका फर्ज कर लें कि बाईपास करके किसी तरह की कोई हिमाकत करने की कोशिश करता है तो खित्ते की जो सूरत हाल है, खित्ते का जो मुस्तकबिल है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, उसकी तस्वीर कैसे देखते हैं?
सबसे पहले मैं उस बात को कंटिन्यू करूंगा जो फैजी साहब ने की कि जो है ऐसे लोग जो है वो बशार असद साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ला के खड़े किए जा रहे हैं, फंडिंग के ज़रिए, वेपन्स के ज़रिए, इवन जो कभी सीरिया में नहीं रहे, या जैसे देखे कि जो अब ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है जो कि ब्रिटेन बेस्ड है, जो कि सीरिया के बारे में ये बताती है कि इतने लोग मारे गए, ये हुआ, ये इनमें से कोई, ये जो है बिल्कुल सीरियन बेस्ड ही नहीं है, ये ब्रिटेन बेस्ड है। और जो सीरिया की नेशनल काउंसिल के नाम से अपोजिशन क्रिएट की गई है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं जिनको उनकी ये है कि असद को रिप्लेस कर सकते हैं, वो कभी सीरियन आवाम में, उनकी रूट्स ही नहीं है, वो सीरिया आवाम में कभी रहे ही नहीं, वो जो है पब्लिक के जो मसाइल है उससे आशना ही नहीं। अब ये रहा कि आपका ये सवाल कि सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें जो है बरसों से ये बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन में जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, खुद यूनाइटेड नेशन का सिस्टम जो है वो, अगर मैं यूँ कहूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम जो है वो डिक्टेटोरियल है, यानी एक जो है वो वहाँ पे भी एक किस्म की डिक्टेटरशिप है। ये जो वीटो का सिस्टम है ये अब जो है इस वक्त की जो मौजूदा वर्ल्ड जिसमें जो है वो मिल नेशंस का शऊर जो है वो बेदार हो चुका है, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर एक ये जो यूएस या फ्रांस या ब्रिटेन जो है या दूसरे ममालिक जो वीटो की, ये मेरा मतलब ये है कि जो चाहे फैसला करे, और उसमें ये है कि नेशंस की जो है डेस्टिनेटी,
मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि खित्ते की सूरत हाल क्या बनेगी अगर अमेरिका ने इराक जैसी हिमाकत सीरिया या शामिल
ये बात, पहली बात तो ये कि इस दफ़ा जो है वो रशिया और चाइना ऐसी हिमाकत जो अमरीका को यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म को मिस यूज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी बात यानी ये कभी नहीं होगा कि जो है, दूसरी बात ये कि अगर अमेरिका और उसके अलाइज जो है कोई ऐसी हरकत करते हैं कि खुद जो है यूनाइटेड नेशन की इजाज़त के बगैर कोई हमला जो है वो जंग जो है इस खित्ते में जारी रखते हैं, तो उसके जो चांसेस है उसके बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका जो है खुद अंदर से जो है वो खोखला हो रहा है, जो यूएस और यूरोप के अंदर ऑन गोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है इक्तिसादी मुश्किलात का जो है, और ट्रिलियंस के हवाले से जो बजट डेफिसिट है कि वो किसी मुल्क को पर जो है कोई और जंग को जो है वो मुतहम्मिल हो सके, और वो भी ऐसी हुकूमत के खिलाफ जहाँ पे जो है उसको आवाम की हिमायत हासिल है, और ऐसी जंग जो कि उनके अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी, जो मुमकिन है पूरे खित्ते में या पूरे, आपने देखा कि परो असद जो असद की तरफदार है उनके लुबनान में जो है वो काफ़ी जो है वो क्लैशेज हुए हैं, यानी ये जंग जो है पूरे रीजन में फैल सकती है, तो ऐसी जंग के लिए वो जो है वो रिस्क नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसका सिर्फ रास्ता जो है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, और पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू जो है उसमें जो है जिसमें असद साहब जो है दूसरे ग्रुप्स के साथ जो है वो काम करने के लिए तैयार।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इश्ताक साहब। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्कों का नाम लिया, अगर यही मान लिया जाए कि इसी तरह से जैसा कि शाम में कोशिश हो रही है बशार असद की हुकूमत को गिराने की, बशार असद को रुख्सत करने की, फारिग करने की, अगर यही चलन चल पड़ा तो क्या सऊदी अरब और कतर जो इस वक्त सबसे आगे आगे हैं शाम में बदमनी फैलाने में, क्या वो ये नहीं सोच रहे कि कल उनकी भी बारी आ सकती है? अमरीका जिस मुल्क के फौजियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि वक्त पड़ने पर मक्का और मदीना पर, जो कि हमारे मुकद्दस इंतहाई मुकद्दस शहर हैं, उन पर बमबारी की जा सकती है हिरोशिमा नागासाकी की तरह, यानी एटम बम गिराया जा सकता है, तो क्या सऊदी अरब को ये नहीं सोचना चाहिए कि कल के बाद हमारे पर भी बारी आ सकती है, और इनके फौजियों को यानी अमरीकी फौजियों को इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है?
असल में ये तमाम रियासतें सऊदी अरब, कतर और यूएई खास तौर पे, आपने देखा कि लीबिया के ऊपर, शाम के ऊपर, इन ये तमाम तीन चार ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, और इनके जो इंटरेस्ट है या इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, अप्रोचेस, वो बिल्कुल यूरोपियन या मगरबी अमरीकी अप्रोचेस से बिल्कुल मुताबिकत रखती हैं। अब जाहिर है कि अगर खित्ते में इंतशार बढ़ता है, शाम में खाना जंगी होती है, उसका असर जो है वो डायरेक्टली, जैसे कि जाफर साहब ने कहा, लेबनान में पड़ेगा। अब अगर आप 30 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे खाना जंगी हुई थी और उसका सब خطے کے ممالک کو بھی اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ اس کا لبنان کے لوگوں کو اور تمام خطے میں اس کا کیا اندھوناک نتائج سامنے آئے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ اور ان تمام اقوام کو سمجھنا پڑے گا کہ ہاں بجا ان کی ڈیپینڈنس ایکچولی ویسٹ کے اوپر اتنی ہے عسکری سیاسی اور تمام لحاظ سے, تو سم ٹائم وہ مور لائل دین دا کنگ والا رول اپنا لیتے ہیں کہ جی ویسٹ چاہتا بھی نہ ہو تو یہ آگے بڑھ کے. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک پیپر کیا تھا او آئی سی کی جو سٹینڈ ہے اپروچ ہے آن سیویلین پروٹیکشن ان آرمڈ کانفلکٹ, تو مجھے اس کی اسٹڈی میں پتہ چلا کہ ایون او آئی سی جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے پورے مسلم دنیا کو وہ ریلکٹنٹ تھی, اور بلکہ انہوں نے پرائیویٹلی اپوز بھی کیا کہ جو سعودی عربیہ اور قطر کی جو پروپوزل ہے ٹو فنڈ اینڈ آرم دی نیو سیرین آرمی سو کالڈ, اب اگر آپ فنڈنگ دیں گے آرم کریں گے اور جو کہ ایک او آئی سی ایز اے ریپرزینٹیو باڈی از اپوزنگ دس آپشن, تو اس میں انتشار پھیلے گا سیریا میں, تو آپ بیسیکلی سیریا یا شام کے اندر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو, اس کا اثر پھر لیبنان پہ پڑے اور اس کا اثر پھر تمام خطے کے اوپر پڑے. اب یہ چیز جو ہے اور اس خطے میں انسٹیبلٹی یا انسرٹینٹی یا بلڈ بات جو ہے وہ آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب, وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اشتیاق صاحب, اور معذرت بھی کہ آپ کی بات میں نے کاٹی. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی, سب کچھ سازش ہو رہی ہے شام کے خلاف صرف اس لیے کہ وہ فلسطینیوں کا حامی ہے, وہ ایک ایسا ملک ہے چند ملکوں میں سے ایک جو امریکہ کی خارجہ پالیسی اس کی ڈکٹیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن افسوس کہ علاقے کی بعض عرب حکومتیں اس بات کو نہیں سمجھتیں, وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شام میں بشار اسد کی حکومت کو گرا کر وہ آئندہ محفوظ رہ جائیں گی, تو یہ شاید ان کی خام خیالی ہے, اور جس طرح سے سعودی عرب میں اس وقت عوامی بیداری کی لہر اٹھ چکی ہے تو سعودی حکمرانوں کو اس سلسلے میں بہرحال ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے باقی زیادہ دیجیے, خدا حافظ, شکریہ.